نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير تعرف حبيب. آج الحمدللہ ہم اس کا نیکس سیشن لیں گے. پچھلے سیشن میں ہم نے جو بات اپنی چھوڑی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو محافظ بنایا وہ عباد بن بشر تھے, حواری جن کو بنایا وہ سعد بن معاذ اور محمد بن مسلمہ اور زبیر بن عوام تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس مائدہ 67 میں, تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنی حفاظت کا کام ختم کروا دیا, ان لوگوں کو فارغ کر دیا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں. آج ہم شروع کریں گے مؤذن. مؤذن کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دینے کی ذمہ داری کن پر تھی؟ آف کورس سب سے پہلے اس میں مشہور نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہے, جن کا پورا نام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہے. پھر عبداللہ بن ام مکتوم القرشی, نبینا تھے اور اذان دیتے تھے. اور ایک موقع پہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھے فجر کی نماز میں کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا, میں لاٹھی کے سہارے ٹیک ٹیک کے جاتا ہوں, تو کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے خطرہ گرنے کا یا بارش ہے کچھ بھی ہے, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا کیا آپ کے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ یعنی آپ ان کا ڈسٹنس دیکھنا چاہ رہے تھے نا, کیونکہ اس وقت کوئی لاؤڈ سپیکرز تو نہیں تھے کہ دور دور تک آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی جی اذان کی کچھ آواز گھر میں تو آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, پھر آپ کو مسجد میں ہی آنا ہوگا. چند سیکنڈ غور کریں, آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے گھر قبرستان تو نہیں بن گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور نہ نماز. تو جن گھروں میں نماز اور قرآن کا اہتمام نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اگلا نام سعد القرص ہے, قبیلے کی وجہ سے. چوتھا نام تھا اوس بن مغیرہ رضی اللہ عنہ, انہی کو ابو محظورہ کہتے ہیں. اور آپ سن چکے ان کا واقعہ تفسیر میں, ینگ بچے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے ہی گزرے, راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا, اذان کا وقت تھا تو اذان دی جانے لگی, تو بچے کچھ کھیل رہے تھے, ینگ جیسے ارلی ٹین ایجر. تو آپ نے دور سے سنا تھا ایک بچہ اذان کی پیروڈی کر رہا تھا, تو خیر آپ نے وہاں جا کر ان کو بلایا, آپ نے کہا کہ کون نبی یہ بات کر رہا تھا؟ تو لوگ ڈر گئے. تو آپ نے جب محبت سے بلایا تو ان کا نام تھا, تو آپ نے کہا کہ تم نے بہت اچھی پڑھی. بس وہ اللہ کے نبی کے لفظوں کی ٹھنڈک تھی نا, وہ جسے جگرے لا اللہ میں ہو ٹھنڈک. ابو محظورہ کہتے میرا دل کھل گیا اور اس طرح نقل اصل بن گئی. تو ابو محظورہ نے بھی اذان دی نبی کے دور میں. پھر اسی طرح حدی خواہ. حدی کس کو کہتے ہیں؟ عرب لوگ اونٹوں کو چلاتے وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے, جیسے رمزیہ اشعار ہیں جوش دلانے کے لیے, تو اس کو حدی کہتے ہیں. حدی خواں کون تھے؟ عبداللہ بن رواحہ, انجشا, عامر بن اقبو اور سلمہ بن اقبو. یہ دونوں کیا لگے آپس میں؟ بھائی تھے, باپ اقبو, بھائی عامر اور سلمہ. اور یہ جو انجشا ہیں ان کو ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آہستہ پڑھو, نگینے ہیں, یعنی قافلے میں عورتیں بھی تھیں, تو عورتوں کے دلوں کو اللہ کے نبی نے نگینے کہے تھے کہ انجشا ذرا یعنی آہستہ آواز میں پڑھو, مراد یہ کہ تمہاری آواز سے عورتیں متاثر ہوتی ہیں. اسی طرح سے کاتبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی لکھنے کا کام کس کس نے کیا؟ خوش قسمت لوگ تھے. آج اگر آپ بھی اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے ہیں تو آپ بھی خوش قسمت ہیں, ترجمہ لکھیں یا تجوید یا کچھ اور. تو ناموں میں سب سے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے. کم ہی چیزیں ہوں گی جس میں ابو بکر کا نام نہ ہو. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، عبی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابان بن سعید رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی سرخ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ. ان ناموں میں سے عامر بن فہیرہ کے ساتھ کیا یاد آیا؟ نہیں یاد نا. ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ تھے تو انہوں نے پیچھے سے بکریاں چرائیں اور آپ کے نشان مٹائے اور آپ کو آ کر دودھ پلایا کرتے تھے بکریوں کا. بہرحال کسی سے اللہ نے کوئی نیکی لی، کسی سے کوئی لی. ان سب نے لکھا. اس کے بعد شعرا کون تھے؟ شاعر. عربوں میں ایک بڑا عام رواج تھا شاعری کا، لیکن جنہوں نے اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شاعری کی ان میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کو بات یاد ہے ان کے ساتھ سورۃ توبہ؟ جی، تین لوگوں میں سے ایک. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. پھر غلاموں میں دیکھیے کتنے نام ہیں. زید بن حارثہ کن کے بیٹے تھے؟ کون تھے یہ غلام؟ تھے حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پہ آپ کو تحفے میں دیے. پھر اسی طرح اسلم، ابو رافع، شفران صالح، صوبان، ابو کفشہ سلیم، رباح نوبی، یسار نوبی، انجش الحاوی، حسنین، مدعم، کیر کرا نوبی، افلح، عبیدہ، فضالہ، سفینہ ابن فروخ، تیمان، تام وطن تامان، ابو اسیب رضی اللہ عنہم اجمعین. کتنے غلاموں کے نام دیکھے؟ 17 نام آپ کے غلاموں کے ناطے سے ہمیں ملتے ہیں. پھر آپ کی لونڈیاں اور کنیزیں، ان کے نام ام ایمن، سلمہ، ام رافع، خزرہ، میمونہ بنت سعد، رضوی، ریحانہ، ربیحہ. خدام یعنی خدمت کرنے والے، یعنی مراد ہے کہ آپ کے کیئر ٹیکر یا وہ لوگ جو خاص طور پہ آپ کی خدمت پہ مقرر تھے، تو اس میں سب سے بڑا نام انس بن مالک کا. ان کو کیا کام دیا گیا تھا؟ آپ کی مسواک کا خیال رکھتے اور نالین یعنی آپ کے جوتوں کی ٹیک کیئر کرتے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک اور جوتوں کے ذمہ دار. اسلو بن شریک رضی اللہ عنہ اونٹ کے محافظ تھے، یعنی آپ کی اونٹنی یا اونٹ جو بھی آپ کے استعمال میں ہوتا تو اس کا خیال کرتے تھے. پھر بلال بن رباح مؤذن تھے. سعد اور اسی طرح سے ذو مخبر حبشی، اور ربیہ بن قابل اسلمی، ابو صبا، عقبہ بن عامر جہنی، سفر میں آپ کا خچر ہانکتے، اور ابو ذر غفاری اور ایمن بن عبید رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے نام ملتے ہیں. خوش قسمت تھے جو اللہ کے نبی کی خدمت کر گئے اور آج ان کا نام ادھر آ گیا. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کی خوبی اور اس کے جنت میں جانے کا راستہ مختلف ہوگا. اسی طرح سے آپ کے ہتھیار کون سے تھے؟ کیا ہوتا تھا آپ کے پاس؟ یہاں یاد رکھیے گا کہ عربوں میں ہتھیاروں کے بھی نام ہوتے تھے، تلواروں کے بھی. تو آپ کی تلواروں میں سے ہمیں جو نام ملتے ہیں، ماسور، ادب، عین دواد با، ادبن، قلعی، بتار، حتف، رسوب، مخدم، قدیب، اور سب سے مشہور تلوار آپ کی کون سی تھی؟ ذوالفقار. شاید اسی لیے انہوں نے اپنا نشان بھی تلوار رکھا ہوا تھا. بہرحال پھر زرہیں آپ کی کون سی تھی؟ ذات الفضول، یعنی ایکسٹرا کہہ لیجئے، ذات الوشاح، ज़ात क्यों आ रहा है पता है आपको, मुअन्नस के लिए, ज़ातुल हवाशी, सादिया, फिज़ा, बतरौ और खरनक। फिर आपकी ढाल जो थी वो थी ज़लूक, ज़लूक। अब ये नाम कौन याद रखेगा, कभी सुने थे ये नाम आपने? नेज़े आपके कौन से थे, मसवी, शनवनी, फिद्दा, जाबा, काफूर, कनानतुल जम और मनसना। लोहे की छुरियां थी आपके जो सामान में, वो क्या थी, कुबा, बैदा और इंजा। लोगों ने नाम रखे होते हैं ना, इन्हीं चीजों से मुतासिर होकर लफ्जों के कोई ना कोई नाम आ जाते हैं किताबों में। लकड़ी की छड़ी जो होती है उसका नाम था ममशूक। खौद, खौद क्या होती है, जो सर पे पहनी जाती है टोपी सी लोहे की, उसका नाम आता है मवश्यख। और जुल सबूग, रंगी हुई, सबूग रंग वाली या वट एवर, बल्कि जू वाला कहते हैं ना, जैसे वही लफ्ज है। फिर जंगी लिबास एक अदद, झंडे जर्द, काले और सफेद, खैमा एक था आपका। सवारियों में ऊंटनी थी, कुस्वा, उदबा और जिदा, ये तीन नाम आते हैं आपकी ऊंटनियों के। आपका खच्चर जिस पे आप सवार होते थे उसका नाम अल शहबा, दुलदुल और फिद्दा। गधा जो आपके इस्तेमाल में था उसका नाम था याफूर और अफीर। घोड़ों के भी नाम सुन के हैरान हो जाएं, लुहैफ, लिजाज, ज़र्ब, ज़ोए से जैसे ना, ज़र्ब, सकब, मुर्तजुस, सईहा, वरदा। क्या लग रहा है सुन के, मुश्किल? क्या जरूरत है नामों की? बस जिस चीज का हमें मिल गया सबूत, हमें पता चल गया। आप देखिए जो अपने प्यारे होते हैं ना, उनकी हर चीज भी प्यारी होती है। आज भी लोग नबी सल्लम के नाम पर क्या कुछ करते हैं ना। कुछ अर्सा पहले की बात है, तो एक औरत तो उम्रे से आई और बड़ी एक खुश और हैरान और कहने लगी कि मुझे नबी सल्लम का बाल मिला। लोगों ने कहा, हैं तुम्हें कहाँ से मिल गया, अगर है भी कोई तो कहीं महफूज होगा, तुम्हें कहाँ मिला? कहने की मस्जिद नबी के अंदर मैं एक अलमारी खोली मैंने और कुरान लेने गई तो उसमें एक बाल पड़ा, तो मैंने पकड़ लिया कि अल्लाह के नबी की तो होगा, तो अलमारी भी नहीं थी तब जब नबी सल्लम थे। तो ये भी तो एक मोहब्बत होती है ना, जो भी करता है मोहब्बत से ही करता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि लोगों को अल्लाह के नबी से मोहब्बत, जिससे प्यार होता है ना, आप उसकी छोटी से छोटी चीज़ उसकी निशानी समझ के रख लेते हैं। अगर आज भी अल्लाह के नबी की कोई सही वाकई पता हो के बाकी ठीक चीज़ है, तो बड़ी काबिले मोहब्बत है हम सब के लिए। अब अल्लाह के नबी का नक्शा, तारफ के अंदर में जब हम आते हैं तो हमारे दिल में हमेशा ज़ाहरी आती हैं, तो अगली कुछ चीज़ें हम देखेंगे आप थे कैसे, हाउ ही लुक्स लाइक, फिजिकली शक्ल व शबाहत, सूरत गिरी कैसी थी। तो इस पे हमारा अगला टॉपिक क्या है, हैरान हूँ कि दो आंखों से क्या क्या देखूँ। इस पे वो अशआर है जो उम्मे मावत ने अल्लाह के नबी का नक्शा खींचा था, और ये औरत की गवाही पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो सूरत गिरी है वो की गई है। क्या है, और वो जब हिजरत के मौके पे अल्लाह के नबी रास्ते में रुके थे, हजरत अबू बकर आपके साथ थे, तो उम्मे मावत नाम की एक औरत के घर में थोड़ी देर रुके थे, और वहां से उसकी बकरी का दूध बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन आपने जब हाथ लगाया तो दूध आ गया, फिर आपने खुद भी पिया और उनको भी पिलाया। तो वो इतनी को मशहूर हुई थी ना, तो फिर उसने बाद में अपने शौहर के घर आने पे जो नक्शा खींचा था ना कि आज तो मेरे घर पता नहीं कौन आया, तो फिर वो खूबसूरत से कसीदे की सूरत में आज हमें किताबों में मिलता है। वो क्या है, वाहसनु मिन का तरक्कतु ऐनी, वाजमालु मिन का लम तलदिन निसाउ, खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाउ। तर्जुमा समझ आ रहा है, दे दूं, वैसे मैंने नहीं देना काम आप। واخسانو من کلم ترقت وینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں رات تھی یعنی فل مون تھا، اور ہم باہر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے سوکھا کچھ سرخ رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی، جیسے کلر ہوتا ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چہرے کو دیکھیں اور پھر چاند کو دیکھیں، تو اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، چمک تھی آپ کے چہرے پہ. واج ملو من قلم تل دن نساؤ، اور آپ سا حسین و جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا. کیا کیفیت ہوتی ہوگی صحابہ کی آپ کو دیکھ کر. یاد رکھیے کہ اللہ نے جن سے اپنا کام لینا ہوتا ہے نا، ان کو فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. آپ ازما کے دیکھیں، بچے ہیں نا، چھوٹے بچوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ، ایک معصومیت ہوتی ہے نا. شکل جیسی بھی ہو، نین نقش کوئی بھی ہو، بچے میں ایک معصومیت ہوتی ہے. بالکل چہرے کے اوپر ایک رنگ آ جاتا ہے جب بندہ حقیقت پہ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. جھوٹا بندہ آپ دیکھیے یا معصیت میں پڑا ہوا بندہ، اسکرینوں پہ جتنا مرضی سجے سنورے، لیکن چہرے پہ وہ حسن نہیں ہوتا. تو صاحب اللہ کے نبی کے چہرے کی بھی باتیں کرتے تھے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کے، اچھا دنیا میں اگر کوئی خوبصورت نہیں تو وہ نیک نہیں، اچھا وہ حبشی، وہ یہ کہنا مطلب نہیں. کئی کالے رنگ کے لوگوں پہ اتنی کشش ہوتی اور کئی گوروں پہ نہیں ہوتی. تو رنگ گورے اور کالے کی بات نہیں اس وقت ہو رہی. اور مجھے لگتا ہے چہرے کا اطمینان، کام کی وہ جو کیفیت ہوتی نا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، وہ سکون اور سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ چہروں کو سفید اور روشن کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں نا، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے. تو وہاں اکثر یہ جملہ آپ کو لکھایا جاتا ہے کہ جنہوں نے زندگی کو اچھا استعمال کیا ان کے چہروں پہ ایک اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی کام کرنے کا. کام کرنے کے بعد جو تھکن ہوتی ہے نا وہ میٹھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سارا دن بستر پہ آپ مزے سے آرام فرماتے رہے اور رات کو کام ہی پڑے اور آپ بھی کھڑے ہیں، آپ میں کروں تو کیا کروں. تو آج بھی جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں نا، اصل میں ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کرنے سے آپ 10 لوگوں کے نام تو میں آپ کو لکھا دوں، اور مزے کی بات ہے کہ ان میں اکثر ریوارڈس ہیں. ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک، سکون. آپ شاید اتنے لوگوں کو نہ بھی جانتے ہوں، لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، کبھی میں نے ان کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں دیکھی. اور جیسے ایک آج کل جب یوٹیوب کھولتے ہیں نا تو ایک ایڈ چلتا ہے، اکثر میرے پاس تو وہی آتا ہے، نیو یارک میں کوئی بہت بڑا اسلامک سینٹر بن رہا ہے تو وہ اس کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں پچھلا 6 سال 1.5 سے نا. تو وہ برادر پتہ نہیں کون ہے، لیکن کبھی آپ ان کی بات سننے، ان کے انداز ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، اور وہ وی آر بلڈنگ آور بگیسٹ نیو اسلامک سینٹر ان نیو یارک، یہ وہ بھی نہیں. ایک تو سٹائل ان کا خود بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ان کے چہرے پہ جو سکون اطمینان ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم ایک اچھے کام کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہمیشہ چہروں کے اوپر خوشی اور اطمینان کو رکھنے کی خواہش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، لیکن اس کو ظاہری فیچرز کی خوبصورتی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑنا، یہ کوئی مطلب ضروری نہیں کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جیسی شکل و صورت والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آپ جیسی خوبصورتی کسی بچے کو کہہ لیجئے کہ ملی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے کہ اس میں کیا آتا ہے. خلقت مبرم من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. آج اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹیلر میڈ. اچھا ہمارے کلچر میں ایک جملہ ہے، فلاں کو تو اللہ نے فارغ ہو کے بنایا، اعوذ باللہ، تو آپ کو اللہ نے دلدی میں بنا دیے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو اللہ کے ساتھ کوئی ایسی نسبت جوڑنا یا کہنا جو انسانوں کے ساتھ ہے یا دوسروں کے ساتھ، اسے اوائڈ کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بہرحال خوبصورتی تھی آپ کی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. حلیہ مبارک کیسا تھا، قد و قامت. اب اس کو دیکھ کر ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج ذہن میں بنا سکتے ہیں ہم لوگ، قد کیسا تھا، یعنی قد اور قامت، نہ دراز قد نہ پست قامت، یعنی درمیانہ تھا. आपने देखा बहुत लंबा बंदा भी अच्छा नहीं लगता, क्या कहते हैं उसको, लंबू, और जो छोटा उसको क्या कहते हैं, ठेगना, दरमियाना। हर चीज में दरमियानी राह अच्छी होती है, बैलेंस के साथ। अच्छा अब इधर आज हुसन के नाम पे या मेकअप के नाम पे आप काले रंग की आंखें बना ले, तो बस नेल पॉलिश लगा ले, तो वो अजीब चीज लगने लगेगी ना। तो हमेशा दरमियान में रहना चाहिए। अब कद लंबा करने के शौक में ऊंची हील का जूता पहन ले तो पाँव मुड़ गया तो क्या करेंगे आप। तो कभी कभी ब्यूटी के नाम पर भी इंसान एबनॉर्मल लगने लग जाता है, इससे अवॉइड करने की जरूरत है। बहरहाल रंगत कैसी थी, चमकदार, ना चूने की तरह बहुत ज्यादा सफेदी और ना ही गंदमी जैसा सांवला। तो फिर तो हम जैसे ही होंगे, देसी लोग, वीटिश कहते हैं ना इनको। बहरहाल सर मुबारक मुतनासिब, ना छोटा और ना ही बहुत बड़ा, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बड़े सर सरदारों के। दरमियाना, हर चीज में आप देख रहे हैं दरमियानापन। बाल कैसे थे, ना सीधे ना घुंघरियाले, बल्कि इनके दरमियान यानी मिडल थे। बालों की लंबाई कांधों और कंधों के दरमियान तक। हमारे अमूमन मर्दों के इतने लंबे बाल नहीं होते, लेकिन अल्लाह के नबी के बाल लंबे थे। चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह रोशन और चमकदार, आंखें सफेदी में सुर्ख डोरे, यानी ये जो वाइट हिस्सा ये बहुत सफेद था और इसके अंदर सुर्ख रंग की वो वेन्स थी, यानी बड़ी एक्सप्रेशंस वाली होती हैं ऐसी आंखें। अब्रू, ये जो भवें होती हैं, बारीक और बाहम मिले हुए, यानी ये बीच में यहां से आपका फासला मिला हुआ था, आपस बाल दोनों तरफ से एक जैसे थे। पलकें स्याह सुरमगी, स्याह तो समझ आ गए, सुरमगी क्या हुई, ऐसे लगता था कि सुरमा लगा हुआ है, यानी आई लाइनर जैसे लगा होता है, और आज भी कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं। पेशानी कुशादा और चमकदार, नाक लंबी और दहन कुशादा, दहन क्या होता है, ये माउथ यानी कुशादा था। दंदान यानी दांत खुले साफ और चमकदार, कान मुतनासिब, दाढ़ी घनी, कुछ बाल सफेद। हमारे दिन में क्या आता है, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। अल्लाह के नबी की दाढ़ी काली थी, कोई कोई बाल ही होंगे बीच में जो अल्लाह के हुक्म से सफेद थे, बाकी सब बाल जो थे वो काले थे। मूछें नफीस तराशीदा और पस्त, यानी मूछों की एक खास लंबाई है, उससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपनी मूछों को यानी ट्रिम करते थे, आप ये कह सकती हैं, अगर क्लीन शेव ना भी कहे ना कोई तो ट्रिमिंग तो बहरहाल अब करते थे। गर्दन लंबी उजली चांदी की तरह सफेद, आप नीचे देख रहे हैं कि सब रेफरेंस मौजूद है, ये बातें ऐसे नहीं कसीदा गोई की तरह कही जा रही, जिसकी दलील है वही बताई जा रही है आपको। कंधे की हड्डियां मजबूत चौड़े शाने, यानी वाइड था आपका सीना। बगल सफेद अंडर आर्म्स, पेट और सीना दोनों बराबर। आज पेट कैसे होते हैं, पेट ना तो अंदर को धंसा हुआ ना बाहर निकला हुआ, यानी फ्लैट, अगर आप सीने पे हाथ ऐसे फेरें तो बिल्कुल उसी की सीध में रह जाए, चौड़ा सीना। नाफ, सीने मुबारक से नाफ तक बालों की बारीक लंबी धारी। अमूमन मर्दों के जिस्म पे बाल होते हैं ना, लेकिन अल्लाह के नबी के बस बीच में एक पतली सी बालों की लाइन थी। कमर सडोल सफेदी और चमक में गोया चांदी से बनी हुई। हाथ एतदाल के साथ बड़े ठंडे और खुशबूदार। साहबी कहते थे कि अल्लाह के नबी का हाथ हाथ में आ जाए तो लगता था कि इससे ज्यादा नरम रेशम कोई नहीं है। हथेलियां और उंगलियां गुदाज और रेशम की तरह नरम, और इसी मुनासिबत से उंगलियां, यानी आपके हाथ गुदले थे, सख्त हाथ नहीं थे। अमूमन मर्दों के हाथों का सोचें तो जहन में सख्त हाथ आते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के हाथों में नरमी थी। कलाई मरमरी और दराज, कलाई क्या होती है, ये रेस्ट जहां घड़ी पहन जाते हैं, ये चौड़ी थी। जोड़ मजबूत और कुशादा, यानी जॉइंट्स जो थे ना वो स्ट्रांग थे। तलवे पाँव के नीचे का हिस्सा, गुदास गोश से पुर कदरे गहरे, यानी मोटे मोटे, जैसे नीचे फोमी सा नहीं तसव्वुर आता है वैसे थे। एड़ी कम गोश था, यानी एड़ियां आपकी ड्राई थी या गोश्त नहीं था इतना। पिंडली, पिंडली क्या होती है, तफत साक बिस साक, ये जो थाई हिप्स के साथ जुड़ा हुआ नीचे का हिस्सा, तो पिंडली कदरे पतली थी, सफेद और चमकदार थी। चाल कैसी थी? अब बाकी चीजों में तो हम कॉपी क्या करेंगे, जाहिर शक्लें तो अल्लाह ने हम सबको दी ना, आप जैसी चाहें, लेकिन चाल ढाल देखिएगा, चलते हुए आगे की तरफ झुकाव करते, ऐसे ऐसे, और मजबूती से कदम उठाते, इस कदर तेज चलते गोया जमीन आपके लिए लपेटी जा रही हो, साथ चलने वाले थक कर चूर हो जाते, बमुश्किल साथ दे पाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तकल्लुफ और बेनियाज चलते जाते। आप लोग कैसे चलते हैं? आप बोले हम चलते ही नहीं। आम तौर पर घर में जो चलते हैं या इधर भी चलते हैं या जैसे भी, आप अपनी उस चाल को देखें, सिर्फ आपकी चाल से आपकी पर्सनैलिटी बताई जा सकती है। यहाँ मैं आप सबको भी कई चीज़ों में नोट करती रहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मेरा काम नहीं है, मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन एक चीज़ जिस पे मुझे हमेशा बहुत ही उलझन आती है, ये पौंग घसीट के चलना, सिर्फ 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 पाँव उठाइए पूरा, फिर रखिए। एक तो एक्सरसाइज है, आपके जो ये टांगों का निचला हिस्सा होता है ना, इसके पट्ठा पूरा उठते हैं फिर बंद होता है, जिस तरह वो लोग करते भी हैं ना कुछ एक्सरसाइज टाइप। दूसरी बात है कि पाँव जब घसीट के चलते हैं तो इल मेहनत लगता है। बचपन से हमारे वालिद ने कहा कि जो पाँव घसीट के चलेगा वो जिंदगी में कभी सेट नहीं होता, मिजाज में असर आता है चलने का। बच्चा पेन कैसे पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे घसीट के, ऐसे पकड़ा, ये उसकी पर्सनैलिटी है। आंखें ज्यादा खोल के देख रहे हैं या नॉर्मल देख रहे हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, पूरी इसका नॉलेज है मौजूद। तो आज से आप एक दूसरे को देखो, और चलते हुए और वॉकिंग, ये वॉक में यानी जो मैंने फील किया है ना, मैं आपको वही बता सकती हूँ कि हम अपने स्टाइल पे, यानी हमारे मुल्कों में अव्वल तो वॉकर ही बाजी नहीं है, अगर हम यहाँ भी कर रहे हो ना तो साथ फोन पकड़ा हुआ इसके, आ चलो जी फोन पे बातें करते रहते और ढीले ढीले कदम, कोई फायदा नहीं होता। फास्ट ऐसे, यदि आप बिल्कुल नहीं, आप जैसे मैं यूं बैठी ना तो मैं थक जाऊंगी, और मैं यूं करूंगी ना तो मेरी कमर से, कमर सीधी रखें, आप कभी नहीं थकेंगे। आप 2 घंटे भी वॉक कर लें, स्ट्रेट चलें, आप पहाड़ी पे चढ़े ना तो अपने आपको यूं कर लें जैसे आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, तो कभी ऐसे अपने पाँव की तरफ देखें, आपको चक्कर भी नहीं आएगा आप ऊपर चढ़ रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे आना है तो कमर पीछे करें, यानी बहरहाल एक पूरी लैंग्वेज है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, जब भी पहले भी ये चीज़ पढ़ी पढ़ाई हुई है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी को ये सारे एरोबिक्स और ये सारी किसने चीज़ें सिखाई थी? अल्लाह के नबी का एक एक मामला, अल्लाह के नबी सल्लम की उठना बैठना चाल ढाल, ये अल्लाह ताला के हुक्म से आपको हर चीज़ में गाइड किया जाता था, और उनको देखकर हमें भी उन्हीं से सीखना। फिर इसके बाद पसीना कैसा था, गोया शफाफ मोती खुशबूदार। अमूमन पसीने में स्मेल होती है ना, लेकिन अल्लाह के नबी के पसीने में स्मेल नहीं थी। जिस्म कैसा था, मुश्क और अंबर से ज्यादा खुशबूदार। ये मुश्क और अंबर क्या होते हैं भाई? खुशबुओं के नाम है। फिर इसके बाद मोहरे नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान कबूतर के अंडे जैसी मोहर थी। किधर? ये इधर पीछे बैक पे, शोल्डर्स के इन बिटवीन, वो जैसे मुक्का सा नहीं होता, और अक्सर आपने मोहरे नबूवत का इमेज भी देखा होगा ना, बिल्कुल इतनी मोटी सी चीज़ थी आपके मिड बैक पे, और सलमान फारसी ने वो देखी थी जब आपको परख रहे थे कि ये सच्चे नबी हैं कि नहीं है, तो पिछली किताबों में भी आपकी मोहरे नबूवत का तذکرہ, तो ये देखकर उनको तसल्ली हो गई थी कि आप वही नबी हैं जिनका तذکرہ हमारी किताबों में है। खामोशी कैसी, बावकार। आप देखिए कि खुद को खुद देख लें और ग्रूम कर लें, तो मुझे लगता है कि आपको दूसरे लोगों से ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। आज हम में से बहुत सारे लोग अपने आपके ऊपर इतना गौर व फिक्र नहीं करते ना, तो फिर दूसरे करें तो माइंड करते हैं आज से। बल्कि सारा पढ़ने और सुनने के बाद आप लोग खुद को भी देखिए और एक दूसरे को चेक किया करें, और एक दूसरे से पूछा भी करें, बताया भी करें मेरे में क्या कमी है। माइंड तो नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक खामोशी बावकार थी, और गुफ्तगू शीरी वाजे और जामे कलेमात। कुछ लोग ना शोल्डर दबा लेते हैं, उससे एक तो यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के बाद। अक्सर हमें ये जो जोड़ों के दर्द होते हैं या जिस्मानी दर्द है ना, ये हमारे पोस्चर की खराबी है। आप किसी भी स्पेशलिस्ट से जाकर बात करें तो वो आपको बताएगा, और आप बजाय इसके कि वहाँ फिजियो करने जाएं और बैठें और 2 घंटे 3 नापने लगाएं, आप अपनी नॉर्मल फीचर ऐसे रखिए, आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं, और वो जाए भी तो वो कहते हैं आपको नहीं जरूरत। हम आउट ऑफ दी वे हमारे बॉडी की शेप को रखते हैं, इसलिए फिर हम थकते हैं। एक और टॉपिक आगे का हम पढ़ लेते हैं, नबी सल्लम का लिबास कैसा था। बेहतर से बेहतर भी और पेबंद लगे लिबास भी पहने, दोनों की बात आ गई ना, दोनों जायज है। यानी आपने 1,000 दिनार या 1,000 दिरहम वाली एक दफा वो शेरवानी टाइप एक चीज होती है वो भी पहनी, और पेबंद लगे भी पहने, कोई बात नहीं, कभी पुराने पहनो कभी नए पहनो, जो मुयस्सर हुआ वो पहना। हम क्या करते हैं, खरीदने जाते हैं, शादी आ रही है, कपड़े ही कोई नहीं। सूती, कतानी, ऊनी, दीबाज सारे प्योर हैं, आप देख लें। कॉटन, कतानी वो जिसको आप रॉ कहते हैं, खड्डी का बना हुआ, ऊनी वूलन है, दीबाज सिल्क है। लेकिन बाद में जब दीबाज मना हो गया था मर्दों को, तो आपने नहीं पहना। इस्तेमाल करदा रंग, पसंदीदा रंग सफेद और सब्ज, सब्ज जुब्बा पहनते थे। सुर्ख धारीदार यमनी चादर भी आपने पहनी, सियाह और हल्के जर्द रंग का लिबास भी पहना। हमारे यहाँ मर्दों के कलर बड़े सॉलिड होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है, एक आध रंग के अलावा कोई मना नहीं है मर्दों को भी किसी रंग के पहनने में। इसी तरह से उमामा, जिसको हम आज के दौर में क्या कहते हैं, पगड़ी, कुछ इसी तरह की चीज, सफेद के अलावा सियाह और जर्द खाक सिथरी यानी स्किन कलर, माइल उमामा, यानी सफेद भी पहनना, सियाह भी पहनना और स्किन कलर का भी पहनना। उमामा के नीचे कभी टोपी और कभी एक खास कपड़ा जिसको कनाव कहते थे, इसका भी इस्तेमाल किया। शिमला छोड़ा भी और नहीं भी छोड़ा, ये क्या होता है भी शिमला, वो पगड़ी के अंदर से जो एक डंडी सी निकली होती है वो। कमीज और तहमन, पसंदीदा लिबास आपके लिए कमीज था जिसको जुब्बा भी कहते हैं, पूरी आस्तीन का पहनते, और आस्तीनें कभी तंग भी होती थी। कभी कभार मौसम के तकाजों के मुताबिक गला खुला भी रखा। उम्र भर टखनों से कदरे ऊंचे तहबंद इस्तेमाल किया। ओढ़ने की चादर सुर्ख चादर थी, सब्ज चादर भी थी, धारीदार चादर हिब्रा पसंदीदा थी। जूता चप्पल की तरह दो तस्मे वाला, एक तस्मा अंगूठे और साथ वाली उंगली के दरमियान रहता, और दूसरा छिंगलिया, ये छोटी उंगली जो होती है, और इसके साथ वाली उंगली के बीच में होता, यानी ये दो उंगलियों के बीच में तस्मा होता। जुराबे और मोजे सादा, मामूली, आला, हर किस्म के पहने। शाह निजाशी के भेजे हुए स्याह रंग के सादा मोजों पर मसा भी फरमाया। हजरत दाहिया कल्बी के दिए हुए मोजों का तोहफा फटने तक इस्तेमाल किया। अंगूठी, चांदी की अंगूठी, नगीना, कभी चांदी का और कभी हबशी पत्थर का, अमूमन दाएं हाथ में पहनी, कभी कभार बाएं में भी, दरमियानी और शहादत की उंगली में ना पहनते। अंगूठी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तरतीब वार नीचे से ऊपर तक 3 सत्रों में कंधा थे, बतौर मुहर तैयार इस्तेमाल की। यानी मीन के हर तरह की चीज जो भी जायज थी वो आपने इस्तेमाल की, और जो आपने पहन लिया वो वैसे भी जायज हो गया। खुराक कैसी थी, हलाल और तैयब, तमाम खाने की चीजें रजा और रगबत के साथ खाते थे, यानी खुशी से खाते थे। हमारे यहाँ तो आजकल तसव्वुर है ना कि नहीं दीनदार है तो खा नहीं सकता, ऐसा नहीं है, जो खाते खुशी से खाते, अक्सर भूखे रहते, कभी पेट पर पत्थर भी बांध लेते। जायका और तबीयत पर कोई चीज गिरा गुजरती यानी पसंद ना आती, तो बगैर कोई नक्स निकाले इसे एक तरफ कर देते। और आज हमारे क्या होता है, खाते भी रहते हैं नक्स भी निकाले, और नहीं खाना तो फिर तो अल्लाह की पनाह। बच्चों को अभी से इस बात की आदत डालें, खाना है कि नहीं खाना लेकिन नक्स नहीं निकालना, बड़े होने तक भी देखिएगा उनकी आदत बाकी रहेगी। पसंदीदा खुराक में दस्ती का गोश्त, पनीर, शहद, खजूर, दूध, कद्दू, सरीद, सरीद ऐसी जैसे हमारे यहाँ हलीम टाइप की चीज, लेकिन ये गोश्त और गेहूं का होता था, दालें नहीं थी इसमें। फिर इसी तरह हलवा और जौ की रोटी यानी बार्ले। अच्छा, ये खाने खाने से फिर हमें सवाब होगा ना, आम खाने से तो नहीं ना होता सवाब, जो भी खाएंगे शुक्र के जज्बे के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुश होता है आपको खाता देखकर। नफासत और सलीका कैसा था? कसरत से तेल का इस्तेमाल करते, कंघा करते, मांग निकालते, लबों यानी मूछों के जायद बाल तराशते, और जिनकी मूछें मुंह में आ रही होती हैं कितना गंदा लगता है। दाढ़ी संवार कर रखते, कसरत से मिसवाक करते, यानी ऐसे लगता है अल्लाह के नबी बहुत डिसेंट है। सुरमा रात सोने से कबल तीन तीन सिलाई दाएं और बाईं आंख में लगाते। खुशबू में मुश्क, ऊद, काफूर और रेहान की खुशबू इस्तेमाल की। घर में एक इतर दान जिसमें बेहतरीन खुशबू मौजूद रहती। खुशबू का हदिया जरूर कबूल फरमाते। अच्छा, ऐसी सुन्नतें आज हमें भी बड़ी याद है। नशिस्त और कैलूला यानी नशिस्त और आराम कैसे करते, यानी बैठते या आराम करने के औकात क्या थे? कभी फर्शी नशिस्त होती यानी जमीन पे बैठते, और कभी चारपाई पे तशरीफ रखते, कभी एक पैर को दूसरे पैर पर रख लेते, तकिए से भी टेक लगा लेते, कभी किसी सहाबी के साथ भी टेक लगा लेते। ये टेक जरा लगा के देखें, अगले ने कहना पीछे हटो, मेरे ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो। गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख कर आराम किया। कभी दोनों राने खड़ी कर लेते और पिंडलियों पर दोनों हाथों से हल्का बांध लेते। अक्सर बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं घरों में ना, घुटने मोड़ के तो हाथों में उसको ले लेना। गजवा बनू मुस्तलक में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के जानू पर सर रख कर भी लेटे थे। तो यानी ये आपकी अदाएं थी। मुख्तलिफ तरह से अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें नबी की इन सारी चीज़ों के साथ भी और आपके मिशन के साथ भी प्यार हो जाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।